शांति। व्यक्ति ऑफिस में बैठे बैठे कुछ काम नहीं था तो अपना स्टेटस अपडेट कर रहा था, पंछी बनूं उड़ता चलूं मस्त पवन में, स्टेटस अपलोड किया। उधर से उसकी पत्नी ने रिप्लाई किया, धरती छूते ही सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना बाल नहीं बचेंगे तुम्हारे चमन में। आज का टॉपिक है रूसना। रूसना कहो, रुष्ट होना कहो, रिसाना, नाराज होना, करीबन 40 शब्द ऐसे थे जो समझ के बाहर थे। तो रूसते कब कब हैं ब्राह्मण जीवन में? दुनिया में तो बहुत अलग अलग तरीके हैं रूसने के। कभी कभी जानबूझ के भी रूस जाते हैं ताकि कोई मनाए, कुछ करे। तो शुरुआत करें, हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो जाए तो रूस जाते हैं। न किसी ने कोई सेवा बोली और हम दो लोगों का अलग अलग मत है तो भी हो जाता है, मेरी बात माननी चाहिए, नहीं मानोगे तो हम नहीं करेंगे, आप ही कर लो। तो ऐसा ही हुआ जंगल में, सारे पंछियों के बीच रुष्ट हो गए पंछी आपस में एक दूसरे से, और वो राजा के पास पहुँचे और बोले निवारण किया जाए। सबकी अलग अलग विशेषताएँ हैं, कोई उड़ना जानता है, कोई तैरना जानता है, कोई पेड़ में चढ़ना जानता है, कोई बिल खोदना जानता है, लेकिन सबको, हर एक व्यक्ति को सारी कला आनी चाहिए। मछली को बिल खोदना भी आना चाहिए, पेड़ में चढ़ना भी आना चाहिए, उड़ना भी आना चाहिए। तो एक स्कूल का निर्माण किया गया, तो स्कूल का निर्माण किया गया तो पहले तो जो हर चीज में विशेष थे उनने ए ग्रेड लिया। मछली ने तैरने में ए ग्रेड ले लिया, है ना, चिड़िया ने उड़ने में ए ग्रेड ले लिया, चूहा ने बिल खोदने में ए ग्रेड ले लिया, और गिलहरी जो थी पेड़ चढ़ने में ए ग्रेड ले लिया। लेकिन अब ट्रेनिंग शुरू हुई सबकी अलग अलग फील्ड में। अब मछली को बोला बिल खोदना है, तो जब उसको बिल खोदने को बोला गया तो इतना उसमें वो हो गई, उसकी बॉडी गड़बड़ हो गया, स्वास्थ्य उसका। अब तो वो तैरने में भी सी ग्रेड में जाने लगी, मतलब जो विशेषता थी उसकी क्वालिटी भी खत्म हो लेनी। तो ऐसे ही सबके साथ हो गया, सब पहले ए ग्रेड में थे, अब अपनी क्वालिटी खत्म कर दी। तो ऐसे ही होता है कि जब हम रूसते हैं और उस समय जब हमारे मन पे ही जो हमारी विशेषता हैं उसमें भी हमारा मन नहीं होता, कहीं और बुद्धि डाइवर्ट हो जाती है रूसने के बाद। बाबा ने कहा आपके मूल गुण क्या हैं, तो उस समय बात ब्राह्मणों की हो रही है ना, तो कभी कभी अपनी विशेषताएं भी इसी, जैसे हमारे इसमें बाबा ने चार सब्जेक्ट दिए, तो जरूरी नहीं कि हम हर चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट हों, लेकिन अगर किसी एक चीज में भी अगर हमने पकड़ा है अच्छे से तो उसको पकड़ के ही रखना है। कभी कभी उससे भी उपराम हो जाते हैं कि अगर हम सेवा कर रहे हैं अच्छे से तो दूसरा आके कभी टोंट कर देगा कि बाबा ने सेवा सेवा थोड़ी कहा, कभी योग भी करो, ज्ञान भी करो, करना है, लेकिन उस चीज को छोड़ के नहीं करना। आपको जो सेवा दी गई है उसमें तो अपन को एक्यूरेट रहना है, पंक्चुअल रहना, साथ में और क्रिएटिविटी ऐड करना है, ना कि उसको छोड़ के दूसरे में लग जाना है। तो लेकिन इसमें कहानी में कुत्ते को बहुत परेशानी थी, वो रूठा हुआ था, जो प्रिंसिपल था उस स्कूल का उसके ऊपर उसने केस कर दिया, बोले हमारा सब्जेक्ट तो है ही नहीं भौंकने वाला, और हमारा एडमिशन भी नहीं किया इन लोगों ने। तो वो तो अलग बात है, उसके विस्तार में नहीं जाते हैं। तो इसमें रूसने में कुछ नुकसान हैं, तो हम देखेंगे पांच प्रकार के नुकसान। पहले आप लोग कुछ बताएंगे, फिर उसके बाद जो हमारे पास हैं वो तो देखेंगे। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, और फटाफट संबंध खराब हो, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती, वातावरण भारी हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, मन की बीमारी हो जाती, मेंटल बीमारी। तो पहला है टाइम वेस्ट, जो निकाला इसमें 5 पॉइंट में पहला है टाइम। टाइम कितना हमारा चला जाता है व्यर्थ में। बाबा ने अभी मुरली में ही, लास्ट मुरली में ही कहा था कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो इसमें एक बार क्या हुआ कि एक तीरंदाज का प्रतियोगिता चल रही थी, तो एक तीर उसमें प्रतियोगिता में आंख बंद करके तीर चलाना था, एक ही तीर, एक ही बार आपको चांस दिया जाएगा और एक ही तीर तरकस में मिलेगा। तो कई योद्धा तो तीर लगाया लेकिन निशाने पे नहीं लगाया, एक ने लगाया तीर और निशाने पे लग गया। तो जब जीतने के बाद उससे पूछा गया कि आपने ये कैसे किया, तो बोला एक तीर मारने के लिए, बोले आपने ये प्रैक्टिस कैसे की, बहुत प्रैक्टिस की होगी। बोले हाँ प्रैक्टिस तो बहुत की है। बोले सफल प्रैक्टिस की है। बोले नहीं, हमने प्रैक्टिस तो 10,000 बार की है और जो तीर मारा है एक पहली बार मारा है आंख बंद करके। बोले 9,999 बार तो हमने आंख खोल के तीर चलाया लेकिन कभी निशाने पे नहीं पहुंचा, मतलब 9,999 बार हम असफल हुए और एक ही तीर सफल हुए। तो असफलता ही सफलता की निशानी है। हम भी ब्राह्मण जीवन में चलते चलते बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सामने आती हैं। अभी जो 21 दिन की भट्टी चली उसमें शायद सबका अनुभव होगा कि नई नई चीज़ें आपके अंदर कितना भूसा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ डस्टबिन में, वो सारा जो है ना निकलना शुरू हुआ 21 दिनों में, जो अलग अलग प्रयोग हुए है ना। तो अपना माइंड ही देख के अपने आप को ही हैरान हो गए कि ये भी था अंदर। कल किसी भाई ने पूछा था कि अभी क्या चल रहा है, तो हमने कहा खाना और सोने ही चल रहा है उधर, तो अभी खाना और सोने के ऊपर ज्यादा चल रहा है। दोपहर को सोना नहीं है और दिन भर खाना नहीं है, यही चल रहा है अब। तो ये भी बहुत मौजों का है। कहाँ अब पहले जब ज्ञान में आते हैं तो क्या सुना, तो बस मौजों का योग है, खाओ पियो सो, यही तो है, भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया, सो आराम से। लेकिन बाद में पता चलता है कि ना सोना है ना खाना है, लेकिन इसी में मौज है, इसी में मौज है, कितना मतलब मजा आता है। और जिस रास्ते में चैलेंज ही ना हो तो मजा ही नहीं है। और वास्तव में बाबा ने कहा है टावर ऑफ माइट की तरफ लास्ट का 6वां जो पॉइंट है क्या है, सिकील दे बच्चे, पुरुषोत्तम संगम योग, ईश्वरी जीवन, जो तुम्हारा ईश्वरी जीवन है ये हीरे तुल्य है। प्राप्तियां हमें वो सुख नहीं देती जो उसको प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ सुख देता है, शायद हमें स्वर्ग में वो अनुभूति सुख की ना हो, लेकिन जो ये पुरुषार्थी जीवन है इसमें जो चैलेंजेस हैं, आप सही चल रहे हो फिर भी लोग कांटा लगा रहे और आप खुश हो, तो ये तो मजा है, इसी में मजा है। आप थके हो सुबह अमृत वेले से उठे हो, आपको बोला जाए नहीं सोना, यही तो मजा है। और झुटके पे झुटके ले रहा है बाबा कमरे में, फिर पीछे से किसी ने उंगली की, फिर उस समय उठ के जाके, और ये नहीं कि सो जाना है, लौट के आना है फिर से और फिर बैठ के फिर नींद नहीं करना है, तब तो मजा है। तो हो जाता है कभी कभी ऐसे ही, किसी भाई सुना रहे थे कि चैलेंज को स्वीकार करना है, उसमें छोड़ना नहीं है उसको। तो हिस्ट्री हॉल में क्या हुआ, एक बार जल्दी उठ गया अमृत वेले, थोड़ा जल्दी, तीन भाई थे वो, तो रात को डिस्कशन किया कि अमृत वेले जल्दी उठ के हिस्ट्री हॉल में अपन योग करेंगे। तो योग कर रहे थे, एक तो काफ़ी दिनों बाद प्लान बना उनका अमृत वेला करने का, बड़ी मशक्क़त के बाद, जब कई क्लासेस सुनी, लोगों के भाषण सुने, कमरे में दो चार लोगों ने धमकी दी, बोले सबसे पहले उठना, उठ के तो चले गए बैठे, तो तीनों को झुटके आ रहे थे। तो पीछे बैठे एक भाई ने, गेट आउट, इधर से बाहर जाओ। एक ने डिसाइड किया, इतनी जल्दी उठे बाबा, देखो ये पहली बार तो आए और वो भी बाहर कर दिया, अब थोड़ा मोड़ा झुटके तो चलते हैं ना, बिस्तर में तो नहीं सो रहे कम से कम। और जाके फिर बोला बाबा नहीं करना मरते, जाके सो गया हो ओढ़ के। दूसरे ने क्या किया कि चलो इधर तो इसको पता है कि हमको झुटके आ रहे, तो चलो बाहर जाते, दूसरी जगह बैठ गया, वो उधर भी झुटके ले रहा, कोई फर्क नहीं। तीसरे ने क्या कहा, वो सीधे गए बाथरूम, कपड़े शायद नहा लिया ठंडे पानी से, और फिर आके उसी स्थान पे बैठा, उसी स्थान पे फिर रेगुलर बैठा, उस दिन से रेगुलर हो गया। नहीं नहीं तो ऐसा होता है कि हमारी गलतियां, हमारे जो नज़दीक के, जो हमारे से जिनके संबंध अच्छे हैं, हम उनसे शायद ही बहुत कम सीखते हैं, हम उनसे ज़्यादा सीखते हैं जो चाबुक लेके खड़े हुए हैं। तो बाबा तो बहुत प्यार देता है ना, इसलिए काफ़ी लंबा समय लग जाता है सुधरने में। वो आत्माएं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, आसपास हैं, अगर वो अगर उंगली ना करें ना, तो शायद ही हम सुधरें कभी। नहीं तो बाबा तो प्यार का सागर है वो, हाँ, और बाबा खुद नहीं कर सकता, नहीं तो बाबा ही से रुष्ट हो जाएंगे, बाबा से नाराज हो जाएंगे। और ऐसा हो जाता है कि दूसरी आत्माएं अगर कुछ करती है तो बाबा से भी लोग नाराज होकर चले जाते हैं। तो पहला है टाइम, कितना टाइम चला जाता है, और एक एक सेकंड कितना मौज, यही तो है मौजों का, बाबा के साथ का अनुभव और बाबा के साथ रहना ही हमारे लिए बहुत अमूल्य है। दुनिया में क्या क्या आत्मा किस लिए जाना चाहती है सत्य, कोई उसको वैभव का सुख चाहिए, साधन चाहिए, सारी चीज़ें तो हैं इधर लोगों के पास। आज बाबा ने आज बोला है कि लोग कितने इधर पे धनवान हैं, फिर भी कुछ काम नहीं आएगा उनका, और फिर भी क्या उनको महसूस होता है स्वर्ग का अनुभव होता है क्या उनको? नहीं होता। उनसे पूछो कि रात को रोटी नसीब नहीं होती, खाने का टाइम नहीं है, है तो बहुत, खाने का टाइम नहीं है। और इधर तो बेफिक्र बादशाह, बिन कुआड़ी बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, दादी कहती थी ना, जेब खाली हमें विश्व के मालिक। तो वास्तव में तो है ही ना कि नो टेंशन, लेकिन टेंशन होना चाहिए, टेंशन जरूरी है। तो पहला है टाइम वेस्ट, दूसरा जो है रूसने से बीमारी होती है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। कभी कभी आ तो गए ज्ञान में, लेकिन अभी भी पुरानी दुनिया का एनालिसिस चलता ही रहता है, वही ख्यालात में है। क्या एक बार क्या हुआ, एक राजा के सामने चोर को पेश किया गया, चोर ने स्वीकार किया, हाँ मैंने चोरी की है, आप जो दंड दोगे मानेंगे हम। तो बोले ठीक है, दो ऑप्शन हैं, एक चूज कर लेना, आपके पास दो सजा देते हैं, एक चूज आपको करना है कि कौन सी आपको लेनी, या तो 100 कौड़े खा लो या 100 मिर्ची खा लो। तो बोला कौड़े से अच्छा है मिर्ची खा लेते हैं। सो मिर्ची खाना शुरू करता है, 10 तक पहुंचता है, अरे नहीं मिर्ची नहीं खाना है क्योंकि धुआं फेंकने लगता है, कान नाक कान से धुआं निकलने लगता है, मिर्ची बहुत तीखी होती है। तो फिर वो कहता है अब कौड़े खाएंगे हम, कौड़े चलेगा। जैसे तैसे करके 20 कौड़े तक तो खा ही लिया, 20 कौड़े खा लिया। उसके बाद कहता है नहीं मिर्ची ठीक थी, फिर शुरू किया मिर्ची खाना। अरे इस बार जैसे तैसे 30-40 मिर्ची खा ली, और फिर कहता है कि नहीं कौड़े ठीक हैं। फिर गया फिर कौड़े खाया, जैसे तैसे 50 कौड़े खा लिए। अभी कहता है फिर से मिर्ची खा लेता, और मिर्ची कौड़े सजा पूरी नहीं हुई। उसको बाद में ये हुआ कि सजा कारावास की भुगतनी पड़ी। और क्या हुआ, 100 से ज़्यादा तो कौड़े भी खा गया, 100 से ज़्यादा मिर्ची भी खा गया। ऐसा ही हमारे जीवन में ब्राह्मण तो हम बन गए, आधा पांव उस दुनिया में आधा इस दुनिया, उधर के भी दुख लेके उसकी भी पोटरी ढो रहे हैं और ब्राह्मण जीवन के भी दुखड़े ढो रहे हैं। इधर ऐसा है इसका भी करना है। बाबा कहता ना एक मार्ग पे चलना है, एक ही चीज दर्द करके भी सह लो ना तो कम से कम पूरा तो हो जाएगा। एक ही चीज में आधा पैर दो नाव में पैर रखेंगे तो न यहां के ना। बाबा कहता है कि बच्चे नष्टो मोहा बनना है ना। आज भी बाबा ने बोला है कि सब कुछ छोड़ दिया ना, एक ही मार्ग पर चलना है ना। बाबा के आज का स्लोगन क्या है, मूल्य किसने पढ़ी, किसी ने नहीं पढ़ी, ठीक है हमने भी नहीं पढ़ी ना, टॉपिक था टॉपिक का था तो मुरली नहीं पढ़ पाए लेकिन तो बाबा ने आज धारणा के सेकंड पॉइंट में बोला है बच्चे तुमको पवित्र बनना है, और तुमको पवित्र बनना है और पवित्र बनने की युक्तियां बतानी हैं। और बाप बाप कहता है फरमान है। अभी लास्ट में जो शांतिवन में मुरली चली, बाबा ने क्या कहा, अतीन्द्रिय सुख पवित्रता का ही अतीन्द्रिय सुख है, और ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य लक्ष्य क्या है हा? वो तो बाबा ने सैंपल दिखा के उल्लू बना दिया है लक्ष्मी नारायण का, वो तो बाबा की वो चाल है हाँ। लक्ष्य क्या है, अभी जो मुरली चली उसमें से बाबा ने सो तुम्हें लक्ष्मी नारायण का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं लिया था। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य इसी मुरली अभी जो 31-30 तारीख को चली जो बाबा मिलन की, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है असंभव को संभव करना। और उन महान महात्माओं को, अभिनेताओं को, राजनेताओं को भी असंभव है पवित्रता की धारण करना, और तुम्हारे लिए असंभव को संभव करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। और यही है, इसी से भगवान की प्रत्यक्षता होगी, इसी से ही सारी सिद्धियां हैं, इसी में संपूर्ण सुख है। और किसी मुरली में, साकार मुरली में बाबा ने कहा था बच्चे अगर इस करना ही है, किसी एक ही गुण में नहीं होते सारे गुण धारण, तो किसी एक ही गुण को ऐसा पकड़ लो। तो बाबा ने उसमें उत्तर दिया था कि पवित्रता को अगर तुमने पकड़ लिया तो सारे गुणों के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं। फिर तुम्हें जैसे कहानी सुनाई ना कि चिड़िया को उड़ने में ही वो माहिर रहे, सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगे, लेकिन अपनी विशेषता वो न छोड़े, तो मूल है उसी में रहना है। तो एनालिसिस का पैरालिसिस तो बहुत चलता रहता है, सोचते ही रहते हैं ये भी कर लें, थोड़ा पैसा भी कमा लें। कुमारों का तो बात मत पूछो थोड़ा पैसा भी होना चाहिए, थोड़ा ये भी होने चाहिए, थोड़ा घर का भी देख लें, इसका भी देख लें। तो एक हाथ, हाथ एक है, लड्डू बहुत सारे नहीं आ सकते, एक ही आए। असंभव को संभव करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। रामायण में राम रो रहा है, राम रोया, सीता चोरी हुई तब नहीं रोया, जब लक्ष्मण को शक्ति बांटने लगी तो सारे उदास हैं, अब क्या होगा, अब तो वापस जाना है, सब ये सोच रहे। लेकिन हनुमान बोला, जब विभीषण ने बताया कि वैद्य है एक लंका में जो इसका उपाय बता सकता है, लेकिन जाएगा कौन? और लक्ष्मण तो सीरियस है, तो हनुमान ने बोला कि रामचंद्र, और राम ने बोला कि ये तो असंभव है कि कोई उधर से लंका से और उसको लेके आए। लेकिन हनुमान ने बोला कि कायर होते हैं जिनके शब्दकोश में असंभव शब्द होता है, मैं जाऊंगा और उसको लेके आऊंगा। और हनुमान जय श्री राम बोला और चला। और सुसेन जो ऋषि वैद्य था उसको उठा के, उसको क्या घर सहित उठा लाया हॉस्पिटल। अब उसको औजार भी तो चाहिए थे, सारा सब उसमें था, तो वो उठा लाया। बुद्धिमान था हनुमान, बार बार जाना पड़ेगा नहीं, क्या अभी उसको लाया, फिर उसके हॉस्पिटल को उठा के ले गया। तो आया, जब सुसेन ऋषि ने वैद्य ने बताया कि सुबह होने के पहले संजीवनी एक बूटी है जो दूसरे छोर, पृथ्वी के लास्ट छोर में है, जो असंभव है लाना, फिर भी आप लोग पूछ रहे तो ये आपको लाना पड़ेगा, और उससे ही उस शक्ति, जो शक्ति बाण लगा है उसका उपचार संभव है। अब ठीक है, उपाय तो मिल गया। इसमें एक बात है कि हम दो चीजें हैं, लक्ष्य और उद्देश्य। क्या अंतर है लक्ष्य और उद्देश्य में? लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है? बाबा बहुत बार मुरली में बोलता है एम एन ऑब्जेक्ट, लक्ष्य उद्देश्य। शब्द अगर दो शब्द हैं तो अर्थ भी अलग अलग होगा कभी कभी। लक्ष्य जैसे अगर मान लें हम, लक्ष्य हमारा पहाड़, ये है लक्ष्य, और इधर से जो इधर तक जाने की यात्रा की जाती है उसको कहते हैं उद्देश्य। लक्ष्य था संजीवनी बूटी लाना और उद्देश्य यात्रा को चलना। तो जैसे ही हनुमान ने स्वीकार किया कि यह असंभव तो है ही नहीं, कि व्यक्ति अगर ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं है, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, एक्चुअल में हम सोचते नहीं हैं, तो कमजोरी हमारे विचारों की है। तो रावण को उधर खबर हो गई कि हमारा हॉस्पिटल गायब हो गया है ना, तो रावण ने बोला कि ठीक है, अब गुप्तचर आए, बोले अब उधर जाने की तैयारी है, हिमालय जाने की तैयारी है संजीवनी बूटी की लाने के लिए। तो रावण ने कहा कि अब हनुमान को रोका कैसे जाए, हनुमान को रोका कैसे जाए। तो उसने कालनेमी को, कालनेमी के पास गया हनुमान, रावण कालनेमी के पास गया और उसको बताया कि कालनेमी के पास गया रावण, तो उससे बोला कि सिर्फ आज रात को रोक लो, लक्ष्मण चला जाएगा, जीत अपनी हो जाएगी, सारे लोग वापस चले जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मण ही है जो एक किसको हरा सकता था, इंद्रजीत को, और रावण की उसमें अगर जब तक इंद्रजीत की हार नहीं होगी तब तक जीतना संभव नहीं है, और लक्ष्मण ही इसलिए हरा सकता है क्योंकि उसने 14 वर्ष का ब्रह्मचर्य धारण किया है, और वही व्यक्ति सिर्फ इंद्रजीत को मार सकता है। तो कालनेमी को बताया उसने रावण ने कि सिर्फ उसको रात भर तुम उलझा के रखो। कालनेमी बोलता है कि जब उस वो आया था हनुमान तुम उसको कुछ नहीं कर पाए, हम कौन से खेत की मूली, हम क्या कर लेंगे। बोले तुम उलझा के रखो बस उसको कुछ समय के लिए, और बाकी जीत अपनी हो जाएगी। तो फिर क्या होता है कि कालनेमी जाता है और साधु का भेष बना के बैठा रहता है और हनुमान को उलझाए रखता है, लेकिन बाद में हनुमान को पता चल जाता है क्योंकि राम के काज के लिए निकले। तो वैसा ही हमारा भी, हम भी ब्राह्मण बने हैं, जो भी है हम भी एक राम के काज के लिए निकले हैं और हमें समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो जो वो हनुमान बोलता है तो अभी एक प्रैक्टिस करेंगे, है ना, सब लोग खड़े होके करेंगे कि बैठ के करेंगे, है ना। तो कम्फर्ट अगर आप कहते खड़े होके करेंगे तो हम बैठ के कराते, लेकिन आपने अभी कहा कि बैठ के करेंगे तो खड़े होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा खड़े हो जाएं दो मिनट और आंख बंद कर लेनी है, और हनुमान का गदा है आपके पास, और आपको इमर्ज करना है कि अंदर जो सूक्ष्म में हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी सूक्ष्म वो कालनेमी है और वो बाहर निकल रहे हैं और हमको उसको मार रहे हैं। सिर्फ विजुलाइज करना है कि उनको हम खत्म कर रहे हैं।
चले पवन कुमार
आंख बंद।
राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं, श्री राम नहीं मोरी सुधलीनी मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं, श्री राम नहीं मोरी सुधलीनी मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम मैं तो राम ही राम पुकारूं। जय श्री राम।
आयुष्मान आओ हनुमान।
महात्मन आप मुझे पहचानते हैं?
हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं।
अच्छा
हाँ ये भी जानते हैं, मेघनाद ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है, ओ तुझे एक वैद्य ने पठाया है, तू संजीवनी लेने आया है।
और
हम सब जानते हैं किते से आवे किते को जावे, किते से आवे किते को जावे, बाबा ने सब बेरा रे, जानो है बड़ी दूर बटेऊ कर ले रैन बसेरा रे, जानो है बड़ी दूर बटेऊ कर ले रैन बसेरा रे।
रैन बसेरा नहीं महाराज, सेवक को विश्राम का अवकाश नहीं होता, सूर्योदय से पहले मैं अगर वहां नहीं पहुंचा तो वहां अंधकार छा जाएगा, भगवान मुझे आगे का मार्ग बताएं और आज्ञा दें।
यही भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे, तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे, जो करना है सो राम करे। राम लखन के जीवन में राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे, जानो है बड़ी दूर बटे ऊ कर ले रैन बसेरा रे, जानो है बड़ी दूर बटे ऊ कर ले रैन बसेरा।
हमें भी जाना है बहुत दूर, और हमें भी अगर रैन बसेरा में फंस गए हम भी, तो जो राम काज के लिए निकले हैं वो काज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमारे इस ब्राह्मण जीवन में भी काल नियमी तो बहुत सारे आते हैं, रूसना रूठना तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारे विघ्न बाधा आते हैं जब हम पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हमारी बुद्धि समर्पित है बाबा के प्रति, के भगवान की सेवा है, हम निमित्त मात्र हैं, तो हमें सारे मिल जाते हैं माया को पहचानने के। जैसे उस हनुमान को इशारा मिल जाता है जब वो स्नान करने जाता है तो मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन वो एक प्रभु के कार्य में कार्यरत है। तो जब हम अपने को निमित्त समझ के, इंस्ट्रूमेंट समझ के चलते हैं, तो हमें निष्फिकर होते हैं, निश्चिंत होते हैं, ना कोई नाराजगी ना कोई रंज किसी से, क्योंकि वो सब कौन है। अगर आप सोचो, आप बाबा भगवान स्वयं बाबा के सामने आप जाएं और बाबा कहे तथास्तु, आप राजा बन गए, मजा आएगा? मजा आएगा क्या? सुख ही नहीं होगा, कितना भी आप कर लो सुख है ही नहीं। टाइम संघर्ष में जो सुख है, जो भगवान की याद से जो यात्रा पार की जाती है ना, जो तुम्हें जो सुख है, शायद हम लगता है दुनिया की कि किसी और चीज में। ऐसा ही है जब कॉलेज में थे चार साल तक, चार साल हमको एक कुटिया जैसे ही था जहाँ कुछ नहीं था, कोई भी सुख सुविधा कुछ भी नहीं, ये भी कहो कि सिर्फ छप्पर और दीवार थी, ना प्लास्टर था ना कुछ था, जब भी सोते थे तो कुछ ना कुछ गिरता था, बरसात में तो पानी चेहरे पे गिरता था, ना फैन ना कुछ भी नहीं था, लेकिन एक ऐसा सुकून था क्योंकि दीवार में प्लास्टर नहीं था। तो सारे स्लोगन थे जो ना, तो उन्हीं को चिपकाते गए, पूरा कमरा विचारों से लिखा हुआ, ऊपर लक्ष्मी नारायण, सोते समय लक्ष्मी नारायण दिखते थे, लेकिन क्या आनंद था। तो कुछ नहीं, खाने पीने का तो ऐसा नहीं था, सुबह जाते थे शाम को ही लौटना 3-4 बजे, तो क्या करते थे कि सुबह सुबह ना अमृत वेले नहीं हो पाता था, लेकिन उसकी बाबा ने कहा ना जैसे युक्ति रचो, तो कोई आके किसी ने क्लास कराई थी, कोई मधुबन से भाई गए थे सेंटर में, तो सुना था कि अमृत वेला नहीं उठ पाते ना, तो कुछ ऐसा करो कि जिससे आपको मजा आता हो वही करो, अमृत वेले उठ के वही करो लेकिन उठने की आदत डालो पहले। तो हमने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, तो वहीं किस पीछे फैक्ट्रियां बहुत सारी थी जिसमें से एक फुल्की बनाती थी एक फैक्ट्री, तो सुबह सुबह उनको जरूरत पड़ती थी लोगों की फुल्की पानी पूरी तो फुल्की ये तो बुंदेलखंडी लैंग्वेज है, फूली रहती ना वो पूरी को, फूल गई तो फुल्की हो गई जैसे होता है ना कि खाते खाते हम भी फूल जाते हैं। आए थे जब वहां से आए थे तो थे ककड़ी, और यहाँ रहते रहते हो गए कद्दू, है ना, आए थे बरबटी और हो गए कद्दू, वो तो अलग है खाना पीना मौज करना तो है ही है, तो कल क्या खाया वो तो ठीक है छोड़ो। अंग कहाँ थे? हाँ फुल्की, तो क्या था उधर पे कुछ नहीं, सुबह उनको हमने कहा कि हमें सिर्फ उठने का डालना है, आप हमको फ्री में काम कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले नहीं, 10-20 रुपए ले लिया करो दो घंटे के। हमने कहा अच्छी बात है, कुछ तो होगा सफल। तो करते थे, वो खुद उठाते थे डेली, हमको उठना ऐसे शुरू हो गया। तो जब जो पहली बार 10 रुपये हमको मिले ना अमृत वेले उठने का, हमने कहा एक तो उठने से इतना फायदा हो गया, पैसे भी मिले और उठे। तो उस भाई ने एक और बात बोली थी, जो आपको अच्छा लगे। तो हमें पैसे गिनना अच्छा लगे, तो सुबह उठ के पैसे गिनते थे। पैसे गिनना मतलब विजुलाइज करते थे। अब जहाँ भी जाते थे, परमधाम का एड्रेस तो हमको 7 साल बाद मिला, अब कहाँ थे वो कोई और जाने। तो पैसे गिन रहे हैं हम, ये विजुलाइज करते थे, क्योंकि वही अच्छा लगता था। जगदीश भाई क्लास में सुनाते ना कि एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठा था भूखा 2 दिन से। तो उससे किसी ने पूछा, 2 और 2 कितने? तो बोले 4 रोटी। बोले 2 और 2 पूछ रहा हूँ, रोटी कहाँ से आई? तो वो व्यक्ति वैसा ही फील करता है। तो ऐसे ही अभाव जिस चीज़ का होता है ना, कुमारों को नशा रहता है सिर्फ इसका, पैसे का, उसको पैसा चाहिए बस कुमारों को शुरुआत में। तो ऐसे ही करते 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 हो गया। एक दिन बहुत साल मतलब 4-5-6 साल के बाद 10 रुपए का जो अनुभव था ना, वो बहुत ऐसा था कि शायद ही कभी वो अनुभव हुआ हो। तो काफी समय गुजर गया, कुछ कारोबार चलता रहा करते रहे। एक समय ऐसा पहुंचा कि दिल्ली का जो पालिका बाजार है उसके सामने जो LIC है, पालिका बाजार के सामने, पालिका बाजार तो नीचे अंडरग्राउंड, ऊपर गार्डन है, उस गार्डन में बैठे थे। कोई ऐसे ही डील थी, कुछ था कारोबार से रिलेटेड, और एक मैसेज आया फोन में, उसी दिन का कारोबार था, वही डील थी। आपके अकाउंट में एक मैसेज आया, डिपॉजिट योर अकाउंट 10 लाख रुपीस। उस समय वो वैराग्य की अनुभूति हुई कि क्या है पैसा, क्या है जीवन में। जो 10 रुपए का जो सुख था ना, वो 10 लाख में नहीं है, क्योंकि बाबा कहाँ गया, ज्ञान योग कहाँ गया, कहाँ सारी चीजें गई पता नहीं। और तब जब किसी चीज का वाह होता था, हम सोचते हैं कि उसमें खुशी होगी, ये हमारा भ्रम मात्र है, सिर्फ भ्रम है। किसी चीज को पा लेना, ये उसकी व्यर्थता जानना, ये बिल्कुल एक्यूरेट वाक्य है। किसी चीज को हम पाने की अगर इस दुनिया में भौतिक इच्छा रख रहे हैं, तो सिर्फ ये आप उससे अनुभव लोगे कि ये जो पाने में मैंने पुरुषार्थ किया ना, ये सब मेरा व्यर्थ था, टोटल टाइम वेस्ट। चाहे सेंटर बनाने में कर लो, उससे कुछ भी, कितना भी पुरुषार्थ, अगर आप निमित्त सेवा के मात्र कर रहे हो, और अगर आपने उसको भोक्ता भाव से कर लिया, तो सिवाय दुख के और कोई चीज नहीं देगी। तो ये थी 2 बातें, 3 कभी और देखेंगे। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कोई भी चीज़ है, बाबा कहता है ना कि हर चीज़ को ज्ञान से कन्वर्ट कर लो। युक्तियाँ ढूंढनी है हमारा परिवर्तन, क्योंकि हम ही जानते हैं, अपने डॉक्टर हम खुद हैं। तो नाराज नहीं होना है, वो तो उदास नहीं होना है, रुष्ट नहीं होना है, ये तो जीवन है, चलता रहेगा, आएगा जाएगा। और कभी भी हम एक संकल्प में कब टिकाए हैं, सबको अनुभव है अपना। एक चीज़ में कभी खुश हुए हैं क्या? नहीं हुए। नई नई चीज़ चाहिए ना, नई नई चीज़ें तो आएंगी ना, नए नए लोग चाहिए परेशान करने वाले, एक चीज़ से तो हमें होना ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो हार नहीं माननी है बस, क्योंकि बहुत सारी असफलताओं के बाद ही सफलता मिलती है। हार नहीं माननी है, उठ खड़े होना है, चाहे कितनी भी गलतियां की हों। अपने जीवन का अनुभव है कि इतनी ब्राह्मण बनने के बाद सबसे ज़्यादा गलतियां की, जब वो ऊपर वाला नहीं छोड़ रहा हमको, तो हम क्यों छोड़े, वो पकड़ा है। हम महाढीठ बन जाओ ना आप, आप नहीं छोड़ो उसको, वो नहीं छोड़ने तैयार, तो हम क्यों अपने आप को छोड़ें। अच्छा, बातें तो बहुत सारी हैं, टॉपिक से अलग भी हो जाती है कभी कभी। अच्छा, ओम शांति।
रुकना नहीं तो झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रुकना नहीं तो झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की पहचान। मिलेगा तुझको दिव्य वरदान, हो मिलेगा तुझको दिव्य वरदान। रुकना नहीं तू झुकना।